समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
एक दिन बीत जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो। तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो। एक दिन बीत जाएगा माटी के मोल, जग में।
नमस्कार, सुप्रभात। आज रविवार है और रविवार सप्ताह भर किए गए कार्यों को विराम देकर अपने अंदर की ऊर्जा को और पहचानने का दिन है। यह कायनात की खूबसूरती का पता लगाने और उसे अपनाने का दिन है। टहलें, ताजी हवा में सांस लें और साधारण सुखों का आनंद लें। जाने माने साहित्यकार अज्ञात कहते थे रविवार आराम का दिन होता है। सप्ताह के तनाव से छुट्टी लें और अपनी आत्मा को तरोताजा करें। लेकिन आप अपना रविवार बेहतर बना सकें और चाय की चुस्की के साथ रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन सकें, हम लेकर आए हैं आपके लिए आज सवेरे।
नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे। एंड एज फरहत राइटली पॉइंटेड आउट दैट यस्टरडे इज संडे for most of the working professionals, unlike us Farhat, who have to come on Sundays also, but most of you would be probably now laid back and probably sipping your cup of coffee or tea comfortably in your bed without rushing to your workplace. So well, we are here to give you the perfect start to your day, where we bring you an amalgamation of various things like the latest headlines, Metro City updates, and of course the last section that we all look forward to, what makes this day special. Janenge kya kuch khas hua tha aaj ke din 19 mai ko, aur un jaani mani hastiyon ko bhi yaad karenge Farhat, who have left their indelible mark on the sands of time. तो शुरुआत की जाए फरहत सबसे पहले
हेडलाइन। बिल्कुल सायरा, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों से। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का प्रचार कल समाप्त हो गया। इस चरण में कल 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और ओडिशा की 5-5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे पुरुलिया में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में दोपहर 12:30 बजे प्रचार करेंगे। बाद में श्री मोदी बांकुरा जिले के विष्णुपुर और मेदिनीपुर के खड़गपुर में भी रैली को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और जौनपुर जिलों में चुनावी सभाएं करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों में रैली करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बलिया में चुनाव प्रचार करेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले में संयुक्त रूप से जनसभा करेंगे। बाद में श्री यादव फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी रैली करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आज महाराजगंज निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगे। वहीं पंजाब में सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार की गति धीमी है। राज्य में लोकसभा की सभी 13 सीट के लिए 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण उम्मीदवारों को प्रचार में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
Election Commission's concerted crackdown on money, power and inducements in the ongoing Lok Sabha elections has resulted in seizures by the agencies worth 8,889 crore rupees. The poll body said in a statement that enhanced vigil against inducements, including drugs and psychotropic substances, has resulted in big seizure actions and continuous surge. Drug seizures worth over 3,958 crore rupees amount to 45% of seizures. With increasing intensity of campaigning, the commission is keeping close tab on attempts to influence voters through inducements. It has directed the CEOs and enforcement agencies to step up the vigil. A district court in Delhi has sent Chief Minister Arvind Kejriwal's close aide Bibhav Kumar to 5-day police custody after he was arrested in connection with AAP Rajya Sabha MP Swati Maliwal's assault case. Bibhav was produced before the Tees Hazari court yesterday. Metropolitan Magistrate Gaurav Goyal remanded him to 5-day police custody for questioning. He is scheduled to be produced before the court on the 23rd of this month after the expiration of his remand. Earlier, Ms. Maliwal had filed a complaint against Bibhav Kumar alleging harassment and torture at Mr. Kejriwal's residence on the 13th of this month. Meanwhile, Mr. Kumar has also filed a counter-complaint against Ms. Maliwal, alleging that she illegally entered the Chief Minister's house on the day when the incident occurred. The Supreme Court Collegium has approved the proposal for appointment of two additional judges, Justice Sushmita Phukan Kaund and Justice Mithali Thakuria, as permanent judges of the Guwahati High Court. The Collegium also approved the proposal for the appointment of Justice Rajesh Sekri, Additional Judge, High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, for a fresh term of 1 year with effect from 29th of July this year. The recommendation was made by Supreme Court Collegium comprising Chief Justice of India D.Y. Chandrachur, Justice Sanjeev Khanna and Justice B.R. Gawai.
मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र के मैदानी इलाकों में अगले चार दिन में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी और मध्य क्षेत्र में भी अगले तीन दिन भीषण गर्मी जारी रहेगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले चार दिन तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 से 22 मई तक और उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश में बुधवार तक भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है।
In Afghanistan, nearly 70 people have been killed, while dozens others remain missing due to devastating floods in Ghor and Faryab provinces. Abdul Wahid Hamas, spokesperson of the Ghor's governor, informed that at least 50 people have died and several others are missing, while thousands of houses have been damaged in the floods. In the northern province of Faryab, deadly floods have claimed 18 lives, rising the fatalities to 68. Last week, as many as 315 people were killed and more than 1,600 injured across the country after heavy rains sparked flash flooding. Rescue and relief workers are struggling to reach some of the worst hit areas. WHO has warned of rising cases of waterborne diseases in flood-affected regions. On to sports now. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru beat Chennai Super Kings by 27 runs in a do-or-die game at the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru to enter the playoffs. Put into bat first, Bengaluru posted a total of 218 for 5, but they need to stop CSK below 201 to stay alive in the playoffs race. Fab Du Plessis scored 54 of 39, while Virat Kohli played 47 of 29 balls for the team. The IPL 2024 playoffs will start on the 21st of this month, with two teams locking horns in Qualifier 1 at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. And India's Vikrant Malik won the men's javelin throw event at the meeting Cidade de Lisboa 2024 Athletics in Lisbon, Portugal. Vikrant Malik threw 80.3 metres in his third attempt to take the title. 28-year-old Malik dominated the event with his first two throws, 71.73 metres and 74.23 metres, also leading the charts. He skipped his last three attempts. Malik's personal best is 81.82 metres. Achieved in Bhubaneswar late in 2022. Neeraj Chopra owns the national record with 89.94 metres. This meet in Portugal was a World Athletics Continental Tour Challenger level event.
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बाद श्रोताओं अब रुख कर लेते हैं महानगरों का। तो सारा सबसे पहले क्या है आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में?
Well, for our left start with Shahre Chennai, Tamil Nadu Science Forum is organizing a free lecture titled From Accidents to Fame is a Role of Serendipity in Science on 25th May from 11 a.m. to 1 p.m. at Anna Centenary Library in Kottarpuram in Chennai. Visiting Professor of Chemistry at KREA University, K.S. Vishwanathan, will be the guest speaker at this event. He was also a faculty at IIT Madras and IISER Mohali. The lecture will focus on how not all discoveries are products of pre-planned experiments, but can also be a result of accidents in the labs. Interesting discoveries in chemical and biological sciences will also be covered in the sessions. A very, very interesting session indeed, because mostly, कई बार ऐसा हम लोग के साथ भी होता है that we have certain thing in our minds, लेकिन कुछ का कुछ जब बन जाता है, and we say, oh, Eureka! So those of you who are interested in attending the lecture, please do attend. Moving on to Bengaluru, Namma Yatri, a mobile app for hailing auto rickshaws in Bengaluru, is set to sign an MOU with the Bengaluru Metro Rail Corporation Limited, BMRCL, to enhance last-mile connectivity to and from the metro stations in the city. Namma Yatri has proposed to BMRCL the setup of kiosks and the initiation of the service on a pilot basis at Indira Nagar Metro Station by the end of May. As part of the digital solution, Namma Yatri drivers can choose destinations from metro stations based on a queue system. Auto rickshaw drivers will be able to prioritize destinations in their dashboard to select rides, and if no rides are available within the queue system, the request will be redirected to the normal ride system. The Scotland cricket team will wear the Nandini logo of Karnataka Milk Federation during the ICC T20 World Cup. The Karnataka Milk Federation has sponsored the team. The Nandini logo will feature in the leading arm of the team's jersey in both English and Kannada. Nandini is a household name in Karnataka for milk and milk products. It is planning to launch Nandini Splash, a whey-based energy drink in the US, during the World Cup tournament, set to begin on June the 2nd. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah had posted on X that Nandini brand, known for high-quality dairy products, will become a global brand by its promotion during the T20 World Cup, and every Kannadiga across the world is delighted about it. Moving on to Hyderabad, Telangana Chief Minister Shri A. Revanth Reddy has inquired about the recommendations made by the National Dam Safety Authority, NDSA, in the interim report on Kaleshwaram Lift Irrigation Project and the measures that need to be taken. The Chief Minister held a meeting with State Irrigation Minister N. Uttam Kumar Reddy at the Secretariat yesterday. Ministers T. Nageshwar Rao, Pongulethi Srinivasa Reddy, J. Krishna Rao, Konda Surekha were present in the meeting. The NDSA has recently submitted an interim report on the repairs and temporary restoration of the damaged Medikada and Sundila barrages, which are considered the most important structures in the Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme. So far, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी सर, राजधानी दिल्ली में सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कल उत्तर पूर्वी दिल्ली में आयोजित प्रचार अभियान में हिस्सा लिया। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2024 का ये चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहती है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर हल करने वाले एक गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के 2 एमबीबीएस छात्रों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन और एक कार जब्त की है। मुंबई की ओर रुख करते हैं। मुंबई में कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुंबई के कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी संजय यादव ने मुंबई वासियों को मतदान करने का आग्रह किया है। जिला चुनाव कार्यालय ने जल और शौचालय सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की है। मतदान केन्द्रों पर महिला, पुरूष, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग लोगों के लिए अलग अलग कतारें होंगी। जिला चुनाव कार्यालय ने अधिक उम्र या अन्य कारणों से मतदान केन्द्रों पर आने में असमर्थ लोगों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। लोकसभा चुनाव के लिए दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में मदद करने के लिए मुंबई में मुफ्त बस परिवहन सेवा प्रदान की जाएगी। शहर में करीब 600 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने 40% से अधिक दिव्यांग लोगों और 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को घर पर मतदान करने की सुविधा प्रदान की थी। और दिल्ली मुंबई के बाद अब कोलकाता का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि फिलहाल कोलकाता समेत राज्य में डेंगू के मामले करीब 1000 हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉ सिद्धार्थ नियोगी ने बताया कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पूरे साल जांच की सुविधा रहती है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरें। और अब रुख कर लेते हैं महानगरों के मौसम का। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कल तेज गर्मी का सामना करना पड़ा काफी हद तक लोगों को, और आज भी काफी जो है गर्मी रहेगी। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं मुंबई में भी न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये तो थे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के मौसम का हाल। तो सायरा, क्या है आपके महानगर में मौसम का हाल?
Well, Farhat, Chennai is expected to have a generally cloudy sky accompanied with some light rain. Temperature in Chennai will hover between 28 and 36 degrees Celsius. So, keh sakte hain southern India mein ab wo pre-monsoon showers aa gaye hain. So, obviously not as harsh as North India. Bengaluru will also have a cloudy sky today, and one or two spells of rain or thunder showers are expected. Minimum temperature was 22, while maximum will be around 31 degrees Celsius. Hyderabad will also have a possibility of rain or thunderstorm or even dust storm. And temperature in Hyderabad will hover between 24 and 36 degrees Celsius.
तो अब इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं. आज 19 मई 2024 है और आज ही के दिन 1743 में जॉन पियरे क्रिस्टीन ने सेंटीग्रेड तापमान पैमाना विकसित किया.
And if we take you back to the year 1649, England was declared a Commonwealth by an act of the Rum Parliament on 19th of May on this day. In 1649, and in 1897, Oscar Wilde was released from jail after 2 years of hard labor. His experiences in prison were the basis of his last work, The Ballad of Reading Gaol, in 1898.
सन 2006 में भारतीय मूल के मलेशियाई उद्योगपति टी रविचंद्रन ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया. वहीं सन 2007 में अमरीकी सीनेट में समग्र आवर्जन सुधार विधेयक पर सहमति मिली.
On this day in 1995, Bala Murali Ambati became the youngest doctor and was listed on the Guinness Book of World Records at the age of 17 on this day in the year 1995. In 1967, one of the first major treaties designed to limit the spread of nuclear weapons went into effect as the Soviet Union ratified an agreement banning nuclear weapons from outer space. With the advent of the so-called space race between the US and the Soviet Union, which had begun in 1957, when the Russians successfully launched the Sputnik satellite, some began to fear that outer space might be the next frontier for expansion of nuclear weapons. To forestall that eventuality, an effort directed by the UN came to fruition in January 1967, when the US, Great Britain, Soviet Union and dozens of other nations signed off on a treaty banning nuclear weapons from outer space. The agreement also banned nations from using the moon, other planets or any other celestial bodies as military outposts or bases.
और सन 2011 की सारा बात करें तो 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज ही के दिन घोषणा हुई थी. फिल्म मोनेर मानुस को राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कृत किया गया था. इसके अलावा फिल्म दबंग को सर्वाधिक मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार दिया गया. मलयालम फिल्म की बात करें तो एदेमाइंते माकान अबू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया, जबकि अरुणिमा शर्मा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया था.
एंड ऑन दिस डे 1971 द फर्स्ट नेवल सबमरीन स्टेशन वॉज बिल्ट एट विशाखापट्टनम. आईएनएस वीरबहु वॉज commissioned as the shore support base for submarines on 19th May 1971. Also on this day in 2018, Prince Harry of Britain married Meghan Markle, an American actress, in St. George's Chapel with grounds of Windsor Castle. Some 600 guests attended the ceremony and nearly 2 billion people worldwide watched the televised event. However, in the years following that, we all know that they left the royal life and now are living an ordinary life.
और चलिए अब याद कर लेते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार नाना साहेब को. उनका मूल नाम धोंडूपंत था. स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया. पेशवा बाजीराव बल्लाराव भट्ट द्वितीय ने नाना साहेब को गोद लिया. इतिहास में नाना साहेब को बालाजी बाजीराव के नाम से भी संबोधित किया गया. 1 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहेब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी तथा पेशवा की उपाधि भी धारण की. नाना साहेब का अदम्य साहस कभी भी कम नहीं हुआ और उन्होंने क्रांतिकारी सेनाओं का बराबर नेतृत्व किया.
Today we are also remembering Jamshedji Nasranji Tata on his death anniversary, a pioneering Indian industrialist who founded the Tata Group, which is India's biggest conglomerate. Named the greatest philanthropist of the century by several polls and ranking lists, he established the city of Jamshedpur. He is regarded as the father of Indian industry. Born into a Zoroastrian Parsi family in Navsari, his family had fled persecution in Persia, finding refuge in India. And despite coming from a family of priests, Tata broke tradition to become the first businessman in his family, establishing an export trading firm in Mumbai. Jamshedji Tata's education was notable for its Western influence, which he received after showing exceptional abilities in mental arithmetic. He graduated from Elphinstone College in Mumbai as a Green Scholar. So today we remember him on his death anniversary.
और अब हम याद कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को। हिंदी के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार माने जाते रहे हजारी प्रसाद। उनके निबंधों को ललित निबंधों के लिए मानदंड स्वीकार किया जा सकता है। वो उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक और शोधकर्ता रहे। साहित्य के इन सभी क्षेत्रों में द्विवेदी ने अपनी प्रतिभा और विशिष्ट कर्तव्य के कारण विशेष यश के भागी हुए। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व गरिमामय, चित्रवृत्ति उदार और दृष्टिकोण व्यापक रहा। द्विवेदी जी की प्रत्येक रचना पर उनके इस व्यक्तित्व की छाप देखी जा सकती है।
Today we are also remembering Malcolm X on his birth anniversary. Well, a very, very known human rights activist who was a prominent figure during the civil rights movement. He was a spokesman for many organizations and he was a vocal advocate for black empowerment and promotion of, of anti-racism things in the American culture. He was his posthumous autobiography on which he collaborated with Alex Haley was published in 1965. We remember Malcolm X today. Back home in India, we are also remembering Vijay Dhondupan Tendulkar today. Or we all know him as Vijay Tendulkar on his death anniversary. A leading playwright, movie and television writer, literary essayist, political journalist and social commentator, primarily in Marathi. His Marathi plays established him as a writer of plays with contemporary unconventional themes. He is best known for his plays Shantata, Court Chalu Ahe, Ghashiram Kotwal and Sakharam Binder. Many of Tendulkar's plays derived inspiration from real-life incidents or social upheavals which provide clear light on harsh realities. He has provided guidance to students studying playwriting in U.S. universities. And in fact, Vijay Tendulkar ne kuch films kabhi screen pe likha tha. Let's listen to it. From the film Akrosh. In fact, Vijay Tendulkar ke screenplays the for Nishant, Akrosh and also for Ardh Satya. Very, very good films.
और श्रोताओं, अब हम याद कर लेते हैं भारतीय तमिल सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका पी लीला को। पार्श्व गायिका के साथ ही वो बेहतरीन संगीत निर्देशक भी रहीं। पांच दशक से अधिक अपने लंबे करियर में पी लीला ने कई शीर्ष संगीत निर्देशकों के साथ काम किया और विभिन्न भाषाओं में 1500 से अधिक गाने गाए।
In fact, some people say not just 1500, over 5000 songs in various Indian languages, including Malayalam, Telugu, Tamil, Kannada, Hindi, Bengali, Sanskrit, Odia, Gujarati, and Marathi, and also Sinhalese. She is also known for her extensive history of collaboration in songs with music composers Dakshinamurthy, M.S. Baburaj, G. Devarajan, and many others. So we have a beautiful song in her voice. Let's listen to it.
और भारत सरकार द्वारा पी लीला को सन 2006 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से एक रस्किन बॉन्ड का। उनकी प्रसिद्धि विशेष रूप से बाल साहित्य की रचना को लेकर है। भारत में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड मूल रूप से ब्रितानी मूल के हैं, पर आजादी के बाद इन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। उनकी कहानियों में बच्चों के सपने, उनकी इच्छाओं का जिक्र होता है, बच्चों के संघर्ष की कहानियां होती हैं। उनके चरित्र रस्टी और अंकल केन आज के बाल साहित्य के सबसे मशहूर चरित्र माने जाते हैं। वर्ष 1999 में बाल साहित्य में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है।
Yes, Bond has authored more than 500 short stories, essays and novels that include 69 books for children. He was awarded the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. He was awarded the Padma Shri in 1999, as Farhad rightly pointed out, and also the Padma Bhushan in 2014. He lives with his adopted family in Mussoorie in the Indian state of Uttarakhand, and he wrote one of his first short stories, Untouchable, at the age of 16 in 1951. Ruskin Bond said that while his autobiographical work, Rain in the Mountains, was about his years spent in Mussoorie, Scenes from a Writer's Life described his first 21 years. And I guess Ruskin Bond remains one of the most loved writer in today's times. We are also remembering another writer, Manik Bandyopadhyay, today on his birth anniversary, a Bengali writer who is regarded as one of the major figures of 20th century Bengali literature. During a lifespan of 28 years of literary career, battling with epilepsy from the age of around 28 and financial strains all along, he produced some masterpieces of novels and short stories, besides some poems and essays. One of the early neo-realist films shot in Pakistan, The Day Shall Dawn, was based on his story. In his literary career, he has written 38 novels, 306 short stories, one book of drama and one book of poems and one book of essays on literature.
और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, और जिनका आज जन्मदिन है। अपने दम पर फर्श से अर्श तक का सफर उन्होंने तय किया। कई रिजेक्शंस का सामना करने के बाद आज उनकी गिनती उन स्टार्स में की जाती है जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता है। उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर, मांझी द माउंटेन मैन, बजरंगी भाईजान, बदलापुर, केकर, रमन राघव, मंटो जैसी कई फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई।
Yes, of course, and nobody can forget his remarkable performance in Sacred Games. And of course, he's known for his roles in Gangs of Wasseypur, Lunchbox, Raman Raghav 2.0 and Manto, among others. As many as 8 films in which he features have been screened at the Cannes Film Festival. And agar unki khat kaat hi dekhi jaye to kuch bhi unme koi bhi kehta ki tumme kya baat hai jo tum logon ko lubha loge.
Bahut sadharan vyaktitv bhi raha, unka sadharan saluk raha, to usme jo hai unke liye pehchan pana bahut mushkil hota hai ki itna अच्छा अभिनय जो है वो कर
yes, सकते हैं। बिकॉज आई थिंक दैट ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स हु प्रॉब्ली जस्ट ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू द कैरेक्टर दैट ही इज प्लेइंग। चाहे वो गणेश गायतोंडे हो, यू कैन नॉट प्रॉब्ली से दैट दिस इज द सेम नवाजुद्दीन सिद्दीकी हु हैज प्रॉब्ली एक्टेड इन रात अकेली है एज वेल। एंड वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म रात अकेली है, वी हैव अ डायलॉग फ्रॉम दैट फिल्म, लेट्स लिसन टू इट।
तुम्हारे और विक्रम सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स देखे हमने, तुम दोनों ने मिलकर भले ही मारो ठाकुर को, जेल अकेले तुम जाओगे विक्रम नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, न्याय मिले।
देखिए साहब, ये बार बार हमारे पीछे आना अकेले में हमदर्दी जताना जैसा बंद कीजिए।
तुम्हारे जैसी औरत को अपने पास फटकने देना दिया, हम तरस खा के आए थे मदद करने के तुम्हारी, समझी।
ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।
तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए, खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए, खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को,
And today we are also remembering Girish Karnad on his birth anniversary, a very, very fine actor, director, writer, playwright and a Gyanpeetha Awardee who predominantly worked in Kannada, Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam and Marathi films. He rose as a playwright in the 1960s, which marked the coming of age of modern Indian playwriting in Kannada, just as Badal Sarkar did in Bengali, Vijay Tendulkar in Marathi and Mohan Rakesh in Hindi. He was a recipient of the 1998 Gyanpeetha Award, which is the highest literary honor conferred in India. And we have also a dialogue of Girish Karnad. Let's listen to it.
Sir, Tiger ke sare passports humne cancel kar diye hain. Ab jaise hi kisi bhi airport se un passport sath guzrega, hume foran pata chal jayega sir.
Tiger tumhari tarah idiot nahi hai jo un passports ko istemal karega. Ye mat bhulo, hum Tiger ki baat kar rahe hain. Hum jo bhi soch rahe hain, वो हमसे एक कदम आगे सोच रहा है।
Girish Karnad was conferred the Padma Shri and Padma Bhushan by the Government of India and won 4 Filmfare Awards, of which 3 are Filmfare Award for Best Director, Kannada, and 4th is a Filmfare Best Screenplay Award. He was a presenter for a weekly science magazine program called Turning Point that aired on Doordarshan in 1991. And I believe, if you remember, Farhad, that Turning Point ko dekhne ke liye bahut sare bachche jo hai, wo ruke rehte the. It was very, very popular. And he has translated his plays into English and has received much acclaim. His plays have been translated into by directors like Ibrahim Qazi, B.V. Karant and Alekh Padamsi, among others. और उसके साथ ही हम लोग को लग रहा है दैट वी हैव टू रैप अप आवर शो.
जी बिल्कुल. तो इसके साथ ही फरहत और सारा को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत.
नमस्कार.
नमस्कार.